नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भारत चीन सीमा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने और सीमा विवाद के परस्पर स्वीकार्य समाधान पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बैठक की। चीन के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग का संदेश और तियानचिन में प्रस्तावित शंघाई शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने कजान में पिछले वर्ष राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ हुई बैठक के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली सहित आपसी संबंधों में हुई प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने शंघाई शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति जिनफिंग का निमंत्रण भी स्वीकार किया। सूत्रों के अनुसार चीन ने भारत की चिंता के तीन प्रमुख विषयों का समाधान करने का आश्वासन दिया। सूत्रों ने बताया कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ हुई बैठक में यह आश्वासन दिया कि चीन भारत को उर्वरक, दुर्लभ खनिज और सुरंगों की खुदाई में काम आने वाली मशीनें उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 तारीख को बिहार के गया में औंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी पर बने लगभग 2 किलोमीटर लंबे पुल से पटना जिले का मोकामा बेगूसराय से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। नए पुल से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को 100 किलोमीटर तक घट जाएगी। इस परियोजना से भारी वाहनों के लिए यात्रा खासतौर पर आसान होगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल करेंगे। कल एनडीए संसदीय दल की नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नेताओं से श्री राधाकृष्णन का परिचय कराया और उन्हें बधाई दी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के सांसदों से श्री राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है।
हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें, तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है।
उधर विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा। कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी।
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा कोटा बूंदी एयरपोर्ट। करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम।
मंत्रिमंडल ने उड़ीसा में राजधानी क्षेत्र नियंत्रित रिंग रोड के निर्माण की भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा और राजस्थान से संबंधित मंत्रिमंडल के फैसलों का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर में रिंग रोड परियोजना से यातायात में सुविधा होगी और जीवन सुगम होगा। श्री मोदी ने कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज व्यापार, आर्थिक कार्य, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत रूस आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। वे मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। वे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विमर्श करेंगे। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व सूर्य कुमार यादव करेंगे। शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। प्रतियोगिता 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।